वहीं अभिमन्यु और इप्सिता के साथ एक एक करके सब लोग पिक्चर क्लिक करवाने आ रहे थे। इप्सिता स्टेज पर बने काउच पर बैठी थी, उसकी पीठ काउच के सहारे टिकी हुई थी। वो किसी तरह खुद को सहज दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट उसकी असहजता को जाहिर कर रही थी। अभिमन्यु उसकी समस्या समझ गया था, वो किसी भी तरह उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि इप्सिता बिल्कुल भी सहज नहीं थी। ये सब अपने मन में सोचते हुए अभिमन्यु ने मासा की ओर देखा। मासा उठकर स्टेज पर आईं और उन्होंने अभिमन्यु और इप्सिता की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है अभिमन्यु, हम आपको बहुत देर से देख रहे हैं, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और मासा के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मासा, क्या हम इप्सिता से कुछ बात कर सकते हैं अकेले में? इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से बात सुनी उसका गला सूख गया। उसने अपने मन में कहा, अब इस अभिमन्यु को क्या हो गया, इन्हें हमसे अब क्या बात करनी है, वो भी इतनी गलत टाइमिंग पर। कैसे जाएंगी हम यहाँ से सबके सामने से, और ऊपर से हमारा ब्लाउज? मासा ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, क्या बात है अभिमन्यु, आपको क्या परेशानी है और किस बारे में बात करनी है आपको? इप्सिता ने अभिमन्यु की माँ की बात सुनी और उसने अपने मन में कहा, प्लीज गॉड, ये मुझे अभिमन्यु जी के साथ बात करने से मना कर दें। सुहासिनी जी, जो मासा के पीछे ही खड़ी थी, उन्होंने अभिमन्यु की बात सुन ली थी। वे स्टेज पर आकर मासा की ओर देखते हुए बोली, अगर कुंवर सा इप्सिता से बात करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है रानी सा। इप्सिता ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी उसने अपने मन में कहा, क्या कर रही हैं मम्मी आप, हम इस हाल में नहीं जा सकती अभिमन्यु के साथ बात करने, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं, प्लीज कोई तो मना कर दे। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि तभी मासा ने कहा, ठीक है अभिमन्यु, आपको बात करनी है तो आप इप्सिता से बात कर सकते हैं। अभिमन्यु ने सुहासिनी जी और मासा की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के पास गया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, इप्सिता प्लीज हमारे साथ चलिए। सुहासिनी जी इप्सिता के पास आईं और उन्होंने इप्सिता को उसकी जगह से उठाते हुए कहा, जाइए इप्सिता, कुंवर सा को आपसे कुछ बात करनी है, उन्हें सामने वाले कमरे में ले जाइए, क्योंकि आप इतने भारी लहंगे के साथ अपने कमरे में नहीं जा पाओगी। इप्सिता उठकर खड़ी ही हुई थी कि अभिमन्यु ने कहा, इट्स ओके आंटी, हम है ना, हम उनकी मदद कर देंगे। इप्सिता जैसे ही उठकर खड़ी हुई अभिमन्यु ने तुरंत इप्सिता की पीठ के पीछे अपना हाथ लगाया और इप्सिता का हाथ पकड़कर संभालते हुए उसे स्टेज से उतार लिया। इप्सिता का हाथ पकड़े हुए वो उसे सबसे दूर ले जाते हुए बोला, हम जानते हैं आपकी ड्रेस में कोई समस्या हो गई है, हम आपको कमरे में लेकर चलते हैं, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। इप्सिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो एक झटके से अपना चेहरा मोड़कर बहुत ही हैरानी से अभिमन्यु की ओर देखने लगी। अभिमन्यु ने अपने हाथ से इप्सिता की पीठ को पूरी तरह से ढंक लिया था। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, आपको? अभी इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जी हाँ, हमें पता है, प्लीज आप कमरे के अंदर चलिए। इप्सिता को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु को इस बारे में पता चल गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी उसे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ, शायद अभिमन्यु के लिए सम्मान। लेकिन फिर वो चुपचाप सामने की ओर बने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभिमन्यु के साथ चलते हुए इप्सिता उसकी ओर ही देख रही थी। चलते हुए वे कमरे में आए, दोनों एक साथ कमरे के अंदर आए और जैसे ही अभिमन्यु उसे कमरे के अंदर ले गया उसने इप्सिता की पीठ के पीछे से अपना हाथ हटा लिया और इप्सिता से अपना मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, हमें आपसे ऐसी कोई बात नहीं करनी है, हम बस आपको वहां स्टेज पर असहज देख रहे थे, इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं, अब आप अपनी ड्रेस ठीक कर सकती हैं, हम आपकी ओर नहीं देख रहे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। इप्सिता हैरानी से अभिमन्यु की ओर ही देखती रही और उसने अपने मन में कहा, ये क्या देख रही हूँ मैं और क्या सुन रही हूँ मिस्टर अभिमन्यु के मुंह से, मुझे तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। इप्सिता के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे और उसने अपने ब्लाउज को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इतनी भारी ज्वेलरी और इतने भारी दुपट्टे के साथ उसका हाथ पीछे की तरफ जा ही नहीं रहा था, इसीलिए वो उसे बंद नहीं कर पा रही थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने इप्सिता की ओर अपनी निगाहें घुमाई। इप्सिता अभी भी अपना हुक बंद करने में संघर्ष कर रही थी। इप्सिता इतनी अच्छी तरह से तैयार हुई थी और इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर इतनी घबराहट और उसे इतना परेशान होते देखकर अभिमन्यु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अभिमन्यु कहीं ना कहीं इप्सिता की आंखों और उसके चेहरे की खूबसूरती में खो गया था। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को अपनी ओर घूमते हुए देखा उसने अपना हाथ नीचे करते हुए कहा, अभिमन्यु, क्या आप हमारी एक और मदद कर सकते हैं, प्लीज आप हमारी फ्रेंड नंदिनी को बुला दीजिए, एक्चुअली हमसे ये हुक नहीं लग रहा। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की बात सुनी उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और दरवाजा खोलकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे नंदिनी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। उसने दोबारा दरवाजा बंद करते हुए कहा, हमें आपकी फ्रेंड कहीं नजर नहीं आ रही, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और वो उसे घूरते हुए देखने लगी। तभी अभिमन्यु ने सफाई देते हुए कहा,
नहीं, आप हमें गलत मत समझिएगा, हम सिर्फ आपका हुक लगाएंगे और वो भी दूसरी ओर देखते हुए। हम आपकी तरफ अपनी नजर भी नहीं घुमाएंगे, डोंट वरी। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर कमरे में रहेंगे तो भी बाहर खड़े लोगों को शक होने लगेगा और वे अलग अलग तरह की बातें करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपके बारे में इस तरह की कोई भी बातें बने, इप्सिता ने धीमी आवाज में कहा। वैसे बात तो सही है और अभी हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। इप्सिता ने एक आखिरी बार खुद से ही वो हुक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लगा। आखिरकार हार मानते हुए उसने अपने हाथ नीचे कर लिए। वो काफी ज्यादा थक गई थी। इप्सिता को ना चाहते हुए भी अभिमन्यु की मदद लेनी पड़ी। अभिमन्यु ने इप्सिता के करीब आकर उसके बालों को धीरे से आगे की ओर किया। जैसे ही इप्सिता ने अपनी पीठ पर अभिमन्यु का हाथ महसूस किया, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसने शीशे में अभिमन्यु की ओर देखा। अभिमन्यु ने जैसा बोला था वो उसकी ओर नहीं देख रहा था, बल्कि उसने अपनी निगाहें दूसरी ओर कर रखी थी। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु को शीशे में देखा, इप्सिता के मन में अभिमन्यु के लिए इज्जत बढ़ गई। जैसे ही इप्सिता का वो हुक लग गया, अभिमन्यु दो कदम पीछे हटते हुए बोला, हो गया। इप्सिता ने अपनी पीठ के पीछे हाथ लगाते हुए देखा और अभिमन्यु ने बहुत अच्छी तरह से उसका हुक लगा दिया था। इप्सिता जल्दी से अपने दुपट्टे और बाल को ठीक करके अभिमन्यु के बगल में आकर खड़ी हो गई। अभिमन्यु ने गेट खोला और वो इप्सिता की ओर देखने लगा। इप्सिता अभिमन्यु के बगल में आकर खड़ी हुई और उसने धीमी आवाज में कहा, थैंक यू सो मच। अभिमन्यु इप्सिता की बात का जवाब दिए बिना ही वहां से आगे बढ़ गया। वहीं नंदिनी इस समय एक वेटर से बात करके उसे सब समझा रही थी और बाकी के आए हुए मेहमानों को स्नैक सर्व करने के लिए बता रही थी। तभी पीछे से किसी का हाथ नंदिनी के कंधे पर आया। नंदिनी ने पीछे मुड़कर देखा और अपने पीछे खड़े शख्स को देखकर वो चौंकते हुए बोली, मिस्टर राणावत, आप यहाँ?
जयराज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, हम आपको वहाँ देख रहे थे, लेकिन आप हमें वहाँ नजर नहीं आई तो हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आ गए। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राणावत, आपको कुछ चाहिए था क्या? जयराज ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए नंदिनी को सिर से लेकर पांव तक देखा। तभी नंदिनी ने अपने हाथ में पकड़े हुए फ्रूट्स चाट की प्लेट को आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रूट्स लेंगे आप? जयराज ने नंदिनी के हाथ में पकड़े हुए उस प्लेट को अपने हाथ में लिया और नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, फ्रूट्स तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन आपके जैसी खूबसूरत लड़की के हाथों से हमने कभी फ्रूट्स नहीं खाए। अगर आप हमें अपने हाथों से फ्रूट्स खिला देंगी तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। क्रमशः